अगली सुबह जो कुछ भी प्रोग्राम में हुआ था उसी की चर्चा पूरे घर में हो रही थी। खाने के लिए प्लेटें कम पड़ गई थीं, बाउल्स खत्म हो गए थे, बीच में लाइट चली गई थी और जनरेटर भी जवाब दे गया था। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत बुरी तरह बिगड़ गया था। अरमान के घर में सब बैठे इसी बात पर बात कर रहे थे। चलो, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं, फरीद खान ने थकी हुई आवाज में कहा। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा मैस हमारे खानदान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, रेहाना बेगम ने नाराजगी जताई। जुबैदा बेगम शर्मिंदगी से चुप बैठी थीं। माहिरा के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी का मिलाजुला भाव था, मगर वो कुछ नहीं बोली। फरीद खान ने माहिरा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें प्रोफेशनल हायर नहीं करना था तो कम से कम किसी ऐसे इंसान से सलाह ले लेती जिसे इन चीज़ों की समझ हो, पता हो कि ऐसे फंक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। किससे सलाह लेती, जुबैदा बेगम तुरंत बोली। रेहान को तो तुमने US भेज दिया और अरमान को इन सब चीज़ों का क्या पता। फैज़ान तो यहीं था, उसे कॉल करके पूछ लेते, रेहाना बेगम ने कहा। अगर फैज़ान सारा इंतज़ाम करता ना तो मजाल है कोई कमी रह जाती, रेहाना बेगम ने भरोसे से कहा। क्यों, अचानक अरमान की आवाज़ उठी। फैज़ान से गलती नहीं हो सकती क्या, वो कोई रोबोट है क्या जिससे कभी गलती ही ना हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जुबैदा बेगम ने उसे रोकना चाहा। अरमान, ऐसे बात नहीं करते। लेकिन इस बार अरमान रुका नहीं। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि अरमान ऐसा नहीं था, वो कभी बड़ों की बात बीच में नहीं काटता था। लेकिन आज वो अलग था। आप जिस खानदान की हिस्ट्री की बात कर रही हैं दी अम्मी, अरमान ने ठंडे लेकिन ठोस लहजे में कहा, पहले कभी इतना बड़ा प्रोग्राम भी नहीं हुआ इस खानदान में। हो सकता है पहले ऐसा कभी ना हुआ हो। उसने एक पल रुककर सबकी तरफ देखा। वैसे भी खाना बहुत था, खाना कम नहीं पड़ा, क्रोकरी कम रह गई थी, अब लाइट की प्रॉब्लम तो अपने आप हुई था। ये सब अगर किसी को ठीक से पता है तो वो फैज़रन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अरमान की बात सुनकर रेहाना बेगम के होंठ तक जवाब आया था, मगर उससे पहले ही फरीद खान ने बात संभाल ली। गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमें माहिरा को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अरमान ने कहते हुए उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा साफ झलक रहा था। फरीद खान कुछ पल चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे उठे और वहां से चले गए। उन्हें अरमान से ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सीधा सीधा उनकी बात काटना ही नहीं बल्कि उनकी बेइज्जती जैसा लगा था। उनके जाते ही कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। अरमान ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने नज़र घुमाकर माहिरा की तरफ देखा। चलो, उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, जो भी तुम्हारे गेस्ट हाउस में कमियां हैं उन्हें ठीक करते हैं। माहिरा ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी हैरानी थोड़ी राहत उसके चेहरे पर साफ थी। अरमान बिना कुछ और कहे आगे बढ़ा और माहिरा को साथ लेकर वहां से चला गया। पीछे बैठे लोग बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। रेहाना बेगम अब भी वहीं बैठी थी, उनकी नज़रों में सवाल ही सवाल थे, ये सब क्या हो रहा है। वहीं जुबैदा बेगम ने हल्का सा चेहरा बनाया, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, मगर अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि जो कुछ हुआ। घर का माहौल अजीब सा हो गया था, जैसे कुछ बदल रहा हो और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। रेहाना बेगम जुबैदा बेगम के घर से वापस आईं तो देखा कि फरीद खान हॉल में टहल रहे थे। वो जैसे किसी सोच में डूबे हुए थे। एयरपोर्ट पर गाड़ी चली गई क्या, मुझे सकीना ने बताया कि ड्राइवर रेहान को लेने गया है, रेहाना बेगम ने आते ही पूछा। फरीद खान ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ चला गया है। रेहाना बेगम थोड़ी हैरान हुई, उन्हें तो कुछ दिन बाद आना था, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं। जब वो आएंगे खुद ही पूछ लेना, फरीद खान ने रूखे लहजे में कहा। उनकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो अभी भी किसी बात से परेशान है, शायद सुबह अरमान की बातों ने उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाई थी। रेहाना बेगम ने बात बदलने की कोशिश की, मुझे पहले पता होता तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाकर रखती, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आ रहा है। फरीद खान अचानक झुंझला गए, वो वेकेशन से वापस आ रहा है, जंगलों से नहीं, जो मिलेगा खा लेगा। उनके लहजे की तीखापन सुनकर रेहाना बेगम चौंक गई, आप ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया। फरीद खान अब रुक गए, उन्होंने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां फैजान की मिसाल देने की, रेहाना बेगम ने तुरंत जवाब दिया। तो इसमें मैंने क्या गलत कहा, सच ही तो कहा, फरीद खान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हों। हर सच हर जगह नहीं बोला जाता रेहाना, उन्होंने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। रेहाना बेगम अब खुद को रोक नहीं पाई। अगर फैजान और माहिरा का घर नहीं बसा तो समझ लीजिए रेहान और सादिया का घर भी नहीं बचेगा, उनकी बात सुनकर फरीद खान ठिठक गए। क्या तुमने कभी रेहान को माहिरा में दिलचस्पी लेते हुए देखा है जो ऐसी बातें कर रही हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। रेहाना बेगम पीछे नहीं हटी। तो क्या पहले कभी रेहान और सादिया के बीच इस तरह के झगड़े हुए थे जो आप हो रहे हैं? फरीद खान के पास एक पल को कोई जवाब नहीं था। कमरे का माहौल और भारी हो गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। तो क्या मसला हो गया? दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। दरवाजे पर फैजान खड़ा था। रेहान नूर को परेशान कर रहा है और सादिया को तकलीफ देने की धमकियां दे रहा है। फैजान की आवाज ठंडी थी मगर उसके हर लफ्ज में इल्जाम साफ झलक रहा था। इतने में ही हॉल के दरवाजे पर हलचल हुई। रेहान और सादिया अंदर आए। जैसे ही रेहान की नजर फैजान पर पड़ी वो ठिठक गया। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? रेहान ने तेज आवाज में पूछा। सादिया भी उसे देखकर हैरान थी। उसे शायद इस वक्त फैजान की उम्मीद नहीं थी। फैजान ने बिना हिले डुले सीधा रेहान की आंखों में देखा। ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप क्या कर रहे हो? उसकी आवाज धीमी थी मगर भारी। रेहान एक कदम आगे बढ़ा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। और मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूं, फैजान ने उसी ठंडे लहजे में कहा। नूर को परेशान करना और सादिया को धमकाना, ये सब क्या है? फैजान, सादिया ने घबराकर अपने भाई को रोकना चाहा। प्लीज रहने दो। लेकिन फैजान अब रुकने वाला नहीं था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं सादिया, आज बात पूरी होगी। पूछो इससे, क्या कर रहा है ये? मगर फैजान तो यहां था ही नहीं, रेहाना बेगम ने एकदम से कहा। उनकी आवाज में यकीन साफ झलक रहा था। वो फैजान को पसंद करती थी और उसे एक सही लड़का मानती थी, इसलिए इस तरह रेहान पर इल्जाम लगाना उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। फैजान ने बिना कुछ कहे अपना फोन आगे बढ़ाया। ये यहां नहीं था, मगर ये क्या है? ये नूर के ऊपर नजर रखवा रहा है। स्क्रीन पर वही फैजान की तस्वीर थी जो रेहान ने खुद उसे सिद्धपुर जाने की भेजी थी। रेहान ने एक नजर फोन पर डाली और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी ही तस्वीर दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? उसने ठंडे लहजे में कहा। लोगों को मैनिपुलेट करना तुम्हें अच्छे से आता है। वो चालाकी से बात को घुमा रहा था ताकि इल्जाम वापस फैजान पर ही आ जाए। फैजान की आंखों में गुस्सा चमक उठा। सबूत की बात तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने सच छुपाया ही नहीं। फैजान, रेहाना बेगम की सख्त आवाज गूंजी, बोलने से पहले सोच लिया करो, तुम किससे बात कर रहे हो? कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया था। सच और झूठ के बीच हर कोई उलझ चुका था। हाँ, मैं गलत हूं, है ना? फैजान ने कड़वी हंसी के साथ कहा। मैं सिर्फ गलत ही नहीं, बेगैरत भी हूं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों जल रहे थे। मैं चोर हूं, घटिया इंसान हूं, उसने खुद पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा। यही सुनना चाहते हैं ना आप सब?
कमरे में खामोशी छा गई। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। फैजान ने एक एक करके सबकी तरफ देखा। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन सच सामने आएगा ना, उस दिन ये सारे इल्जाम आप लोगों को खुद पर भारी लगेंगे। उसकी आवाज धीमी थी मगर हर शब्द सीधे दिल पर लग रहा था।